الحمد لله جائے मसलो अहिड़े नमूने सां आहे, तंहिंजे करे जेके इदारा आहिनि उहे इन क़ाबिल आहिनि ई कोन त उहे मुल्क बि हलाए सघनि। उन में जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जूं सलाहियतूं इन क़ाबिल आहिनि ई कोन जो इदारा हलाए सघनि। ऐं वरी मथां असां वटि जेके नियत जो मसलो अचे थो उहो इहो आहे त हिन वक़्तु इदारा उन्हनि खे न था वञनि, जेके इदारे हलाइण जो मक़सदु नथा रखनि बल्कि करप्शन जो मक़सदु। जंहिंजे करे सॼा हालात मुल्क जा हालात ख़राब, उहे जेके सियासत में आहिनि उहे सभिनी खां वधीक ख़राब आहिनि। उन्हनि खां पोइ ॻाल्हाइण जी काई ख़बर ई कोन्हे, जदीद स्टेट कीअं हलंदी आहे। कोई मिसाल थोरो डॉक्टर आहे MBBS करे जेको आहे उहो आयो आहे, हाणे जेको आहे सियासतदान बणिजी वियो। कोई इंजीनियर आहे उहो आयो आहे, हाणे सियासतदान बणिजी वियो। केरु आयो आहे जेको अॻु में जेको आहे क्रिकेट जो हुयो, सियासतदान बणिजी वियो। सियासत में त असां वटि सलाहियत जो नालो निशानी कोन्हे। मुल्क हलाइण जे लाइ जेका मैनेजमेंट खपे थी हूंदी आहे जेको उहा कहिड़े क़िस्म जी हूंदी आहे, कीअं इंसान जे अंदरि पैदा थींदी आहे, असां वटि इहे शयूं आहिनि ई कोन। तंहिंजे करे असां वटि इहे सभु मसाइल मौजूद आहिनि ऐं जेसि ताईं असांजी इहा सहूलियत रही इहे मसाइल इहे रहंदी सहूलियत जेका आहे उन लिहाज़ खां पिया असां कॾहिं हिन पासे वेंदासीं, कॾहिं हुन पासे वेंदासीं, पंहिंजो असांजो को मौक़ो आहे पंहिंजी असांजी का हैसियत आहे कोन, जाॾे वठी वेंदा पिया हलिया। हिन वक़्तु जेके मसाइल आहिनि जो बुनियादी तौर जेको इहो आहे त हिन वक़्तु दुनिया जंहिं निज़ाम ऐं सिस्टम मां गुज़री रही आहे, जेको हिकु सरमाएदार निज़ाम आहे, हिन में कमज़ोर जो कोई न ईंदो आहे। हर को ॻाल्हि ॿुधंदो आहे ताक़त वारे, जेको कमज़ोर हुजे भले हरकत हुजे ॻाल्हि में कोन ॿुधंदुसि, ताक़तवर हुजे भले ग़लति बयान करे हुनखे ॿुधंदो। असां मुसलसल जेको आहे चारि साल यार ट्रंप खे ॾिठो, मुसलसल कोन ॻाल्हाईंदो रहियो आहे, मुसलसल इदारा हुनखे जेको आहे ॿुधाइनि था सचु ॻाल्हाइणु जेको आहे उहो अमेरिका में ॼण तबाबत ई लॻी वई आहे। तंहिंजे करे असांजी इहा सूरत हाल अहिड़े नमूने सां जारी आहे जो कमज़ोर जो हिन वक़्तु दुनिया में कोई कोन्हे, जेको कुझु आहे उहो ताक़तवर आहे। तंहिंजे करे अगरि इंसान चाहे थो त पंहिंजी इज़त पंहिंजी जान पंहिंजी माल खे महफ़ूज़ करे त ताक़तवर बणिजण सां कोई चाहे माण्हू ई कोन हुजे, चाहे वॾी कोन हुजे, चाहे कुझु बि हुजे, बहुत सारे बातें हम करते हैं, लेकिन याद फिर क्यों होता है नहीं होते, शेर की बुनियाद पे क्यों होता है नहीं होते, देखो दीन की बुनियाद पे उतना ही होता है होंगे जितने हम दीन और तशैर से वापस ना होंगे, जितनी वापस तगी तशैर से दीन से होगी उतने इस प्लेटफॉर्म पे होता है होंगे, जितनी वापस तगी ना होगी तो इस प्लेटफॉर्म पर कैसे दिखाएंगे। अब देखें कि हम जो है वो अपनी जिंदगियों में दीन के साथ कितने वापस आए, जब हम अपने दीन के साथ वापस आ ही नहीं है, बहुत कम वापस आ है, तो फिर उस बुनियाद पे हम मुत्तहिद कैसे हो सकते हैं, हमारे अंदर इत्तेहाद कैसे आ सकता है, कौमियत की बुनियाद पे मुत्तहिद हो, कौमियत की बुनियाद पे चाहे पाकिस्तानी कौमियत की बुनियाद पे मुत्तहिद हो, हम कितना पाकिस्तानी कौमियत की बुनियाद पे जो है वो वाबस्ता है इसके साथ, इस नजरिए के साथ, इस नजरिए के साथ जितने वाबस्ता होंगे उतने मुत्तहिद होंगे, अगर वाबस्ता ही नहीं होंगे तो मुत्तहिद कैसे होंगे। इसलिए बुनियादी तौर पे हम जिन बुनियादों पे मुत्तहिद होना चाहते हैं या करना चाहते हैं हमारे को उन बुनियादों पे वाबस्ता ही नहीं है, तो उन बुनियादों पे मुत्तहिद होने का कोई सवाल नहीं पैदा होगा। हम सिर्फ और सिर्फ जो है मफादात की बुनियाद पे मुत्तहिद, हम हमारा जो रब्त है और ताल्लुक है वो सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफादात के हवाले से है, इसलिए जब भी हमें ये महसूस होता है कि जी शायद अगली बारी मेरी है तो फिर जो है मैं जरा मैदान में आने के लिए तैयार हो जाता हूँ, लेकिन जब तक ये मुझे एहसास नहीं है और मैं समझता हूँ कि अगली बारी अभी मेरी नहीं है तब तक मैं जो है वो मैदान में आने के लिए तैयार हूँ। हमारी सूरत हाल ये दीन की बुनियाद में मुत्तहिद होने के लिए सबसे पहले दीनदार बनना पड़ता है, अगर दीनदार नहीं है तो उस बुनियाद पे कैसे मुत्तहिद, मुल्क की कौमी बुनियाद में मुत्तहिद होने के लिए मुल्क और कौम की तरफ तवज्जो होना लाजमी है, उसकी तरफ वाबस्तगी लाजमी है, अगर उसकी तरफ वाबस्तगी नहीं है तो मुत्तहिद कैसे होंगे। इसलिए हमारे यहाँ कोई चारा नहीं होता, सबक वाज़े है। अब हम कोशिश करते हैं मसनूई तौर पर इत्तेहाद लाने के लिए, वो वक्ती तौर पर कभी चल जाता है, फिर जब वापस आता है तो दो दिन तीन दिन हमारा वो इत्तेहाद चलता है उसके बाद खत्म हो जाता है, इसलिए वो मसनूई था, हमने जज्बात उभारे, जज्बाती तकरीरें की, जज्बात उभारे और थोड़ा सा हासिल किया, जैसे जज्बात ढीले पड़ गए मसला कोई ताकत नहीं खत्म हो गया। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि दीन की बुनियाद पे मुत्तहिद हो तो दीन की बुनियाद पे मुत्तहिद करने से पहले हमने पूरी कौम को दीन से वाबस्ता करना है, अगर हम कौम को दीन से वाबस्ता कर पाए तो फिर हम दीन की बुनियाद पे कौम को मुत्तहिद कर सकते हैं, अगर हम वाबस्ता ही नहीं है तो मुत्तहिद कर सकते। ये सूरत हाल हमारे यहाँ बिल्कुल जो है वो वाजे है, कोई काम इस वक्त जो है जो सूरत हाल हो रही है वहां पे कुछ लोगों ने तकरीरें की जो कि एक आप मैंने भी सुनी है पुरानी मजीद सर पे उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बचाओ, तो यही तो दुश्मन चाहता है कि आप कमजोर हो और फरियादें करें, कमजोर आप हुए नहीं और आपके ऊपर हमला हो, क्यों अपने आप को कमजोर दिखा रहे हैं, कमजोर दिखाना खुद, चूंकि मैंने अर्ज किया कि इस वक्त दुनिया कमजोर की नहीं है, इस वक्त दुनिया मजबूत की ताकतवर की, तो आप तो अपनी ताकत का इजहार करें तो कमजोरी का इजहार क्यों करते हैं, कुरान उठा के और क्यों भीख मांग रहे हैं जिंदगी की, ये तो अपने आप को और कमजोर दिखा रहे हैं, जब कमजोर दिखा रहे हैं तो होगा पता है कि ये कमजोर है, इसलिए हमेशा ये होता है कि दुनिया में انسان مسائل کا شکار ضرور ہوتا ہے, مصیبتیں ضرور آتی ہیں, تکلیفیں ضرور آتی ہیں, لیکن کامیاب وہ ہوتا ہے جو ان تکلیفوں میں کمزور نہ پڑ گیا. جو کمزور پڑ گیا وہ ختم ہو گیا, پھر اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی ختم ہو گیا. اور یہ چونکہ ہم نے دیکھا ہے اس سے پہلے کی دنیا میں, پوری دنیا میں ہمارے جو بھائی ہیں وہاں پہ ہزارہ, ان میں بھی بہت سارے وہ ہیں جو قومیت کی بنیاد پہ ہیں, اور سوشل اس کو کہتے ہیں کہ اس بنیاد پہ اپنے آپ کو قومی بنیاد پہ متحد کرنا چاہتے ہیں, دین مخالف ہیں. اب جو دین مخالف بندہ ہے, جس کا دین پہ اعتماد نہیں ہے, اگر ایک آدمی قتل ہو جاتا ہے تو اس کی نظر میں تو نقصان ہو گیا, دو آدمی قتل ہو گئے نقصان ہو گیا. جبکہ دین کی بنیاد پہ اگر دو آدمی قتل ہو گئے تو نقصان کوئی نہیں ہوا, شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد قوم میں زیادہ جوش و جذبہ آتا ہے. اس لیے جب بھی قومیت کی بنیاد پہ تحریکیں اٹھی ہیں, جب ان کو کچلا گیا اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے, تو وہ پھر میدان چھوڑ کے باہر یہی صورت حال جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ عربوں کی ہوئی. عربوں نے کبھی حملہ کیا اسرائیل پہ, اور اسرائیل نے جو ہے ایک ہی دن میں پتا نہیں کتنے جو ہے جہاز اور ٹرین کو ڈبوا دیے. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو گیا تو پیچھے رکھ گئے. جبکہ دین کہتا ہے بھائی صورت حال الگ ہے, دین کا تصور ہی اس کے بالکل الگ ہے. دیکھیں ایک نظر جو ہے تھوڑی سی آپ تاریخ پہ ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو تاریخ آپ کو نظر آئے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی دینی سربراہ بھیجا ہے اس کی حمایت ہمیشہ کمزور لوگوں نے کی ہے, اور باطل کی حمایت ہمیشہ طاقتور لوگوں نے کی ہے. یہ شروع سے چاہے حضرت ابراہیم اور نمرود کو دیکھ لیں, یا حضرت موسیٰ اور فرعون کو دیکھ لیں, یا امام حسین اور یزید کو دیکھ لیں, ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ خدا جب بھیجتا ہے تو پھر ان کی حمایت کمزور لوگ کرتے ہیں, اور طاقتور لوگ ہمیشہ باطل کی حمایت کرتے ہیں. یہ کلیہ ہے. لیکن پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کمزور جو ہیں اگر خدا پہ ایمان رکھے تو خدا ان کی مدد,
سبحان اللہ,
خدا مدد کرتا ہے تو پھر طاقتور کو یہ
سمجھ.
اور پھر آپ نے دیکھا کہ نمرود کیسے مارا گیا, اور فرعون کیسے مارا گیا, اور یزید کا نام نشان کیسے لکھا. یہ جو ہے وہ ہمارے سامنے تاریخ. اس لیے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب دین جو ہے آگے بڑھتا ہے تو وہ کمزور ہونے کی وجہ سے یہ نہیں سمجھتا کہ چونکہ ہم کمزور ہیں تو پیچھے ہیں. دین یہ سمجھتا ہے کہ ہم کمزور ہیں, باطل مضبوط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے, خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے. اگر مضبوط کو جو ہے کمزور مار جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے مدد کی. یہی مسئلہ جو ہے وہ ہمارے یہاں ہر جگہ سے رہا ہے. جب بھی قومی تحریکیں وجود میں آتی ہیں تھوڑا سا نقصان ہو جاتا ہے, پیچھے جو ہے چلے جاتے ہیں, جبکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ کمزور تھوڑے سے اور کمزور ہو, تاکہ جب میں مدد کروں تو یہ نہ ہو کہ ہم نے مارا ہے, یہ نہ تصور کریں کہ ہم نے مارا ہے ان کو یقین ہو جائے کہ خدا کی طاقت نے. مسلمانوں کے آپ دیکھیں کہا کہ جی جنگ بدر میں 1000 آئے تھے اور ادھر جو ہے 313 تھے, جن کے پاس سواریاں بھی نہیں تھیں, ہتھیار بھی نہیں تھے, پھر بھی جو ہے اللہ نے ان کمزوروں کو
فتح دی. लेकिन फिर जंगे होने हैं उन्हें,
मुसलमान तादाद के हिसाब से बड़े हो गए और फिर जो है वो इतराने लगे कि अब हमें कौन शिकस्त दे सकता है, जब हम थोड़े से तब तो हमें शिकस्त न दी, अब जो है कौन। तो कुरान मजीद कहता है कि जमीन अपने वसअत के साथ उन पर तंग कर, ये न समझो कि तुम मार रहे हो, नहीं ये खुदा की इसलिए कमजोर होना दीनदार के लिए ये तो समझना ये है कि जी खुदा की फतह की तरफ हम जा रहे हैं, अब हमारी दुनिया में कोई मदद नहीं होगी, अब खुदा की तरफ से मदद होगी, हम हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा हो रही है कि खुदा हमारी मदद करे। ये है असल मसला जिसको समझने की जरूरत है, इसको हम नहीं समझते, इसको हम नहीं समझते। जब तक हम वसाइल पर एतमाद और ईमान रखेंगे तब तक जो है हक कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, हक हमेशा उस वक्त कामयाब होता है जब बताते और कमजोर होना उनके धक्का मारने का रास्ता नहीं होता, कमजोर होना उनके लिए ये यकीन होता है कि अब खुदा की मदद आने वाली है। जैसे पूरी दुनिया में ये मिसालें आप पूरी तारीख में जरूर देखें, इसी तरह से होता है। इस वक्त ये जो कमजोरी दिखा रहे हैं ये सारे वो हैं जो कौम परस्त हैं, कुरान मजीद उठा के कभी जो है फजलुर रहमान से कह रहे हैं, कभी जो है वो सदर से कह रहे हैं, कभी वजीर आजम से कह रहे हैं, कभी किसी से कह रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे दो आदमी चार आदमी ग्यारह आदमी कत्ल हो गए, हमारा नुकसान हो गया, हम तो खत्म हो रहे हैं। जबकि यही सूरत हाल अगर ईमान वाले के पास हो तो यकीन समझेगा कि अब खुदा की मदद आने वाली है, वो परेशान नहीं होगा, वो भीख नहीं मांगेगा, हमें हमारे अंदर सलाहियत पैदा हो रही है कि खुदा हमारी मदद, खुदा की मदद का तरीका ये होता है। एक इसमें मजीद जो है चीज आपको, देखें खुदा की मदद हमेशा उस वक्त होती है जब जो कमजोर हो उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया, पूरा जोर लगा जितना है वो लगा दिया। जब तक कमजोर अपना पूरा जोर नहीं लगाते तब तक खुदा की तरफ से मदद नहीं। अपना पूरा जोर तो लगाओ ना तुम, क्योंकि अगर तुम पूरा जोर ना लगाओगे, थोड़ा सा जोर लगाया और खुदा ने मदद कर दी तो तुम कहोगे कि अभी तो करने वाले थे, नहीं अपना पूरा जोर लगाओ जितना है, जब समझो कि अब तुम्हारा बस नहीं चलता तो यहां से जो है मसला ही तरीका ही खुदा की मदद का उसूल है वो ये कि तुमने जहां तक अपना पूरा जोर लगा के खत्म कर दिया, अब खुदा पे तवक्कुल करो, खुदा को बुलाओ, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन जब तक पूरा जोर अपना नहीं लगाओगे खुदा मदद नहीं करेगा। ये सूरत हाल है जिसको हमें जो है समझने की जरूरत है। भारत मसाइल है हमारे मुल्क में, हमारे इदारे सारे नाअहल हैं, हमारी सियासत सारी नाअहल है, हमारी ब्यूरोक्रेसी सारी नाअहल है, उसमें अफराद ऐसे बैठे हैं जो इदारे चलाने की नीयत नहीं रखते, वो सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पर जो है अपना गुजारा करते हैं। एक और जो मुनासिबत है वो बरसी अभी अभी गुजरी है कासिम सुलेमानी के, उनके साथ जो और साथी थे खासतौर पर जो मेहदी मुहंदिस थे, इकरार थे, ये दोनों पुराने जो है थोड़ी सी याद है खिदमत में इसकी देखभाल करता हूँ। ये जो कासिम सुलेमानी हैं ये ईरान की कोई फौज के पूरे सरबराह नहीं थे, एक हिस्सा है फौज का जिसको सिपाही पासदारान, सिपाही पासदारान के भी सरबराह नहीं थे, सिपाही पासदार में एक जो है ब्रिगेड है अल कुदस उसके सरदार और इस ओहदे पे सरबराही के इस ओहदे पे बहुत अरसे से बहुत उनको कहा गया प्रमोशन के लिए कहा गया नहीं मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए कहा गया हो सकता है कि इसी ओहदे से रिटायर हो जाओ या इसी ओहदे पे शहीद हो इससे आगे नहीं चलेगा कौन इंसान है जो अपना प्रमोशन करके हक जो है आगे में नहीं चल इससे आप इस शख्सियत का जो है वो मकसद के साथ जो कमिटमेंट है उसको आप समझ सकते ये पूरे न फौज के सरबरा आते हैं न सिपाही सरबरा जो है पासदारान के पूरे जो है सरबरा आते हैं सिपाही पासदारान में एक हिस्सा अल-कुदस ब्रिगेड जो है उसके सरबरा है बस लेकिन आपने देखा कि उन्होंने कारनामे कितने अंजाम दिए इन कारनामों के जो बुनियाद है वो दो चीजें हैं जो उनके कारनामे हैं थोड़ा सा पीछे पीछे चले जाए तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ पे जो इसराइल को हुजूम दिया गया ये यूरोपीय कौमों ने यहाँ पे अपने पांव जमाने के लिए एक जो है इलाका लिया ताकि है पूरे मिडिल ईस्ट में फैला जाए ये बरतानिया ने अपनी पार्लियामेंट में 1917 में वो रेजोल्यूशन पास किया और ये दे दिया जी सेमोनियों को ये आपका है और जाके आप रहे ये सारे जितने आए हुए हैं ये सफेद नस्ल वाले सारे यूरोपियन 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 ये मकामी नहीं सारे अब जाहिर है पूरी जो उस वक्त की मगरबी कुमतें वो ये दुनिया पे हावी थी इसलिए इसराइल जो है वो फैलता गया सूरत हाल जो है इस हद तक पहुंची कि फलस्तीनियों को अपने घरों से निकाला गया मुल्क से निकाला गया ये हमारे यासर अरफात जाके लुबनान में जो है वो रहे वहाँ पे लुबनान की भी एक चीज़ जरा सुन ली है वो ये है कि जो इसराइल का इलाका है लुबनान की जो सरहदें बनती हैं वो जो सरहदें लुबनान से मिलती हैं इसराइल की वो शिया आबादी इसराइल इन पर जुल्म करता था जब फलस्तीनी वहां से जो है ये यासर अरफात वाले आए वो लुबनान में तो फिर ये फलस्तीनी जुल्म करते थे फलस्तीनी जुल्म करते शियों का लेकिन आप तशय्यों का किरदार देखेंगे कभी भी तशय्यों ने जबान में ये चीज नहीं थी कभी नहीं और जब खुद मजबूत हुए तो न सिर्फ ये कि फलस्तीनियों की हिमायत की बल्कि मुसलसल हिमायत में ये तशय्यो का किरदार है ये तशय्यो का किरदार जो आजकल दुनिया में आपको नजर आता है बार बार उसके बाद यह हुआ कि जी जो इसराइल मुखालिफ कुवतें थी वो कमजोर होती थी आगा सुलेमानी का जो सबसे पहला कारनामा है वो ये है कि उस वक्त जो भी इसराइल मुखालिफ कुवतें थी उनको मजबूत किया मुत्तहिद किया है और मजबूत किया सबसे पहले लुबनान को मजबूत किया हिजबुल्लाह को मजबूत किया उसके बाद जो है फलस्तीनी तंजीमों को मजबूत किया हमास और जिहाद इस्लामी और वगैरह वगैरह जितनी और ये जो हमास और जिहाद इस्लामी ये कोई आसानी से एक तरफ नहीं हुई है ये इन्होंने बहुत सारे तजुर्बे किए थे उन्होंने कहा ठीक है आपकी मर्जी एक दफा इनके पास आए उन्होंने हिमायत की सऊदी अरब ने देखा कि ये तो लड़ जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हम आपकी हिमायत करते हैं ठीक है भाई जाओ हम तो नहीं गए फिर मालूम हुआ कि जी वो नहीं कर रहे फिर उन्होंने हिमायत की फिर जो है यूएई वालों ने रह दिया फिर उन्होंने हिमायत की छोड़ दिया उन्होंने मिस्र ने लिया कतर ने लिया पता नहीं कितने तजुर्बे ये कर चुके सबसे नाकाम होने के बाद जो है इस वक्त जो है ये इनसे वापस था। इसलिए सबसे पहले जो कारनामा है आगा सुलेमानी का वो ये है कि इन्होंने जो इसराइल मुखालिफ महाज था उसको मुत्तहिद किया है, उनके आपस में रवाबित बनाए और उनको मजबूत किया है। मुझे अच्छे तरह से याद है जब हम बचपन में खबरें सुनते थे कि ये लुबनान में यासर अरफात है और हमला हो रहा है इसराइली और फरिश्ता शतीला हजारों अफराद जो है कत्ल हो गए, फलस्तीनी कोई दुनिया में पूछने वाला नहीं है, इसराइल ने कत्ल किया। इस वक्त इनको इतना मजबूत कर दिया कि अब जो है इसराइल इस हमास पर और इस जो है वो हिजबुल्ला पर एक गोली चलाते हुए भी सोचता है लेकिन कहां से निकाला और कहां तक पहुंचा। ये इसराइल मुखालिफ महाज को मजबूत किया है ये आबा कासम सुलेमानी का सबसे बड़ा काम है और इस हद तक मजबूत कर दिया है कि अब जो है इसराइल अपने वजूद के लिए खतरा समझता है। हालांकि इसराइल के पास हर तरह की कुवत है, एटमी कुवत भी है, लेकिन फिर भी कमजोर है। ये अल्लाह कासिम सुलेमानी का पहला जो है वो कारनामा है और इसको इसके लिए अगर कासिम सुलेमानी ने बहुत ज्यादा मेहनतें की है, बहुत ज्यादा काम किया और बहुत ज्यादा मुसीबतें और तकलीफें बर्दाश्त की। ऐसा नहीं है कि आसानी से कोई बदलता है, इस तरह की चीजें आसानी से नहीं बदलती, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। लेकिन उनकी एक शख्सियत है वो यह है कि मसलन इंतहा सच्ची दर्शक है। अगर आप उनके सामने कोई बात करें जो बिल्कुल सादा और बचकाना हो तो हम अगर अपने अंदर महसूस करते हैं कि बात हम कर रहे हैं ये तो बहुत ही सादा बचकाना बात कर रहा है, तो अगर जाहिर नहीं हंसते तो कम अज कम आती है, कभी भी आवाज जो है सुलेमानी इस तरह संजीदगी से सुनते थे तारीख की बात और संजीदगी से उसको समझाते थे। कभी किसी की राय जो है उसको नीचे ला के और उस पर तंग जोड़ इस तरह की बातें कर देते हैं, ये उनका किया वो तरीके का था। ये पहला उनका कारनामा। दूसरा उनका जो कारनामा है वो इस दाइश का खात्मा है और इसको भी आप समझ लें कि क्या हुआ है। अमेरिका और रूस जो है मध्य मुकाबले के आपस में दो थे। अमेरिका उसने जो है वो मुल्कों को मिला के एक फौजी इत्तेहाद बनाया था जिसको ये नेटो कहते थे और रूस ने जो है अपना इत्तेहाद बनाया था उसको सेंटो कहते थे। अब हुआ यह कि गोरबाचोव के दौर में जो है वो रूस खत्म हो गए। जब रूस खत्म हो गया अब अमेरिका के लिए दुनिया को अपने साथ रखना किस बुनियाद के साथ रखना। भाई नेटो इसलिए बनाएंगे कि ताकि रशिया का मुकाबला कर सके, रशिया तो खत्म हो गया, इत्तेहाद ही खत्म हो गए जो रशिया के साथ थे, अब नेटो का क्या इलाज है बाकी रहे, क्यों बाकी रहे नेटो, भाई दुश्मन होता है तब तो बाकी रहता है फौजी, दुश्मन ही नहीं रहा क्या क्या जरूरत। इसलिए अमेरिका ने एक प्लान बनाया, प्लान ये बनाया कि दुनिया को मस्तूई तौर पे डराना भी है और उस डर को जो है अमेरिका ने खत्म भी करना है ताकि अमेरिका सबके लिए निजात दहिंदा साथ कि हमने निजात देगा। इसी बुनियाद पे ये आपका जो है वो 9/11 के बाद ये तालिबान और अल-कायदा और फिर जो है चलते चलते इराक और आराम और फिर दाइश ये सारे वजूद में आए। मकसद ये था कि एक तरफ को इनको सामने ला के दुनिया को खौफ में मुब्तला कर दिया जाए, लेकिन सबसे ज्यादा ये जो दाइश के जुल्म थे वो दिखाने वाले ये मगरबी जो है मीडिया थे, सबसे ज्यादा दिखाते थे। क्यों दिखा रहे इसलिए खौफ ज्यादा था दुनिया को करना था, दुनिया को खौफ ज्यादा करना था। अब खौफ ज्यादा भी करना है और फिर जो है खुद जाते हैं उनको खत्म भी करना है ताकि दुनिया के लिए निजात दहिंदा जो है अमेरिका बन जाए। ये उनका प्लान था पूरा। इसलिए पहले जो है वो अफगानिस्तान पहुंचा ताकि वहां पे कोई दूसरा उनकी गेम जो है खराब ना कर सके। इसी तरह से जो है वो पहले जाके इराक पहुंचा ताकि वहां पे जो दाइश वजूद में आए कोई वहां पे गेम खराब करने वाला अमेरिका का कोई वहां पे वजूद में ना रखता होगा, वो तो उसके पास होगा। लेकिन आप देखेंगे कि सूरत खान बिल्कुल जो है उलट हो गई। सूरत आप उलट ये हो गई कि अफगानिस्तान में वो अलकायदा और आपकी जो है वो तालिबान को न सिर्फ ये कि खत्म नहीं कर सका बल्कि खुद जो है उनके पास जो है साथ बैठ के वो बातें जो है शुरू हो गई और इराक और शाम में दाइश को खत्म करने के लिए जो है रासिम सुलेमानी पहले पहुंच गए, उन्होंने खत्म कर दिया। तो ये अमेरिका का पूरा गेम आप देखेंगे आरा सुलेमानी ने दुश्मन को नुकसान क्या पहुंचाया, उनका पूरा गेम कर दिया कि ये पैदा करके दुनिया को जो है वो खौफजदा करेंगे फिर जाके इनको मारेंगे खत्म करेंगे और निजात दहिंदा दुनिया का जो है बन जाएंगे। पैदा तो किया लेकिन खत्म करने से पहले जो आगा सुलेमानी पहुंच गए उन्होंने खत्म कर दिया और दुनिया के लिए निजात दहिंदा वो बन गया सारा इनका गेम जो है। ये बहुत बड़ा जो दूसरा कारनामा है वो आगा कासिम सुलेमानी का है कि अमेरिका की पूरी गेम जो है इस इलाके से वो खत्म कर दो, तो वही गेम थे। और ये गेम जो है सिर्फ इस इलाके के लिए नहीं थी, ठीक इस इलाके में लेकिन इसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया को उन्होंने जो है वो धोखे में रखा डराया क्योंकि इसमें जो आपके पास जो है वो अलकायदा या तालिबान इनके जुल्म या मसल जो है दाइश के जुल्म ये सारी दुनिया को दिखा रहे थे ताकि दुनिया को जो है दहशत में मुबतला करें। कुछ ना कुछ जो है हमले भी अपनी जो है मगरबी दुनिया में हुए ताकि मगरबी दुनिया और दुनिया को जो है दहशत में मुबतला किया जा सके और फिर जो है खुद निजात दहिंदा भी बन जाए इनको खत्म करने के लिए। लेकिन मालूम हुआ कि सारा प्लान ये है दूसरा कारनामा जो आगा कासिम सुलेमानी का था। उन्होंने अपना किरदार जो होना चाहिए था वो अपना कंप्लीट कर दिया था, आधा नहीं छोड़ा प्रोग्राम को, ये आधा बीच में नहीं छोड़ा। इसराइल के खिलाफ महाराज को मजबूत कर आधा नहीं छोड़ा, बीच में नहीं है। ये जो अमेरिका का प्लान था ये पूरा नाकाम कर दिया, आधे में नहीं, उनका कोई प्रोजेक्ट आधा नहीं, पूरा मुकम्मल सारे मुकम्मल। ये होता है लोग तो करते हैं अच्छे काम भी करते हैं लेकिन अच्छे काम करने के वजह से पहले खत्म हो जाते हैं, इंतकाल हो जाता है, मामला बदल जाते हैं। लेकिन इन्होंने ये जो दो काम जो है वो रहबर ने उनको सौंपे थे वो दोनों काम अपने पाए तकमील तक पहुंचा दिए।
इसलिए आखिर में वो उत्तर थे,
या अल्लाह सारे मेरे साथ ही चले गए, मैं अकेला रहा। वो अल्लाह मिल गए, वो शहादत भी दे दी। अच्छा, शहादत के हवाले से एक फिर मसला नज कर दे, एक होता है मैदान जिहाद, जहाँ पे इधर भी हमला हो रहा है, इधर से भी हमला हो रहा है, वहाँ पे अगर कोई मोमिन मुसलमान जो है कत्ल हो जाता है, ये शहीद है, इसके लिए न गुस्ल है, पाक है इसका, इसका जिस्म पाक है, गुस्ल देने की कोई जरूरत नहीं। और इसी तरह से कफन देने की कोई जरूरत नहीं, इसका जो भी अपना वो लिबास है वही कफन, नमाज पढ़े और दफन करे। लेकिन दूसरी जगह पे मसलन जो है मिसाइल आया और किसी आबादी में गिरा और मसलन जो है वहां पे शहीद हो गया, ये भी शहीद है, लेकिन ये वो शहीद नहीं, ये वो शहीद नहीं, क्योंकि ये जो मैदान जंग में आया है ये अपना इख्तियार से अपनी जान जो है अकेले पे लग रख के, वो जो घर में बैठा हुआ है और मिसाइल आके गिरा है वो तैयार नहीं है मौत के लिए, हाँ उसकी बेगुनाह जरूर जो है मौत है, लेकिन वो शहीद नहीं है, इसका जो है हुस्न भी होगा और इसका कफन भी होगा, सारी चीजें जैसे आम होती है वैसे ही होंगी, लेकिन दर्जा शहादत का अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से मिल जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा कासिम सुलेमानी के हवाले से, मैंने जो बात जो है पढ़ी मुताला किया, तो उनके जो जनाजा जमा किया उन्होंने, और वो खुद जो है उसका इंटरव्यू मैंने पढ़ा, तो सारे जमा करके जो है वो लाए, इराक में भी जो है वो जनाजे का जो निकला, ईरान में भी अगर अगले दिन जो है वो नमाज पढ़ानी थी, तो वो कहता है कि मैं ये इंतजार कर रहा था कि अगर अंदर से कोई मिले तो उससे बात कर। बात यह थी कि उन्होंने जो है वो आगा कासिम सुलेमानी के जिस्म के कुछ हिस्से जो है वो मुख्तलिफ जगहों से जमा किए थे, पूरा जो है वो जिस्म नहीं था, हिस्से को जमा किए थे, और फिर जो है वो देखा कि इनको जो है गुस्ल तो नहीं दिया जा सकता, तो इसलिए तयम्मुम किया था, तयम्मुम वो दिया था। तो कहा कि जब अगर आबर आए तो अभी थोड़ा सा इसके लिए अभी थोड़ा सा जो है वो टाइम था नमाज पढ़ाने के हवाले से, तो कहते कि इतफाक से मुझे टाइम मिल गया, मैं आगा के पास चला गया और कहा कि जी इस तरह से उनका जनाजा मिला था और गुस्ल तो मुमकिन नहीं था, इसलिए हमने जो है तयम्मुम किया था। कहा कि रहबर ने कहा कि आपने जहमत की, इनको गुस्ल की जरूरत नहीं। देखो ये जो आगा कासिम सुलेमानी है, ये जहाँ पे गए थे ये कोई मैदानी जंग तो नहीं था, एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट का एरिया था, वहां पे कोई महाज तो नहीं था, लेकिन आप इस शख्सियत का अंदाजा लगाए कि एक मरजा जो है शिया मरजा मुफ्ती इस तरह का, वो कहता है कि इनको गुस्ल की जरूरत नहीं थी, इसका मतलब यह है कि ये खुद मैदान जिहाद थे, खुद मैदान जिहाद थे, जहां पे भी गए वो मैदान जंग बन जाते, इसलिए कहा कि इनको गुस्ल की जरूरत है, आपने जहमत की इनको गुस्ल की जरूरत है, आप अंदाजा लगाएं कि इनकी शहादत जो है उसका दर्जा क्या है। भारत ये सारे मसाइल हैं जो भारत हमारे सामने हैं, हम इनको देख रहे हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हम जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि दीन की बुनियाद कायम हों, ये बात समझने की ज़रूरत है دین کی بنیاد پہ ہم کوئی تنظیم بنا کے متحد نہیں ہوں گے. بات کا مسئلہ ہے, دین کی بنیاد پہ اتحاد تب ہوگا جب ہم ہماری قوم دین سے وابستہ ہوگی. دین سے وابستہ یہ ہوگی تو دین کی بنیاد پہ متحد ہوں گے, پھر تنظیم بنا لیں, پارٹیاں بنا لیں. لیکن اگر جو ہے وہ دین سے وابستگی ہی نہیں رہی تو پھر تنظیمیں جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی. وہ پھر جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ نقصان کرتی ہیں, کیونکہ ایک تنظیم بن گئی دوسری بھی بن گئی, وہ آپس میں پھر جو ہے وہ جھگڑا چلتا رہتا ہے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو ہے وہ کام ہوتا رہتا ہے, ایک دوسرے کو جو ہے وہ میدان سے باہر نکالنے کے لیے کوششیں ہوتی رہتی ہیں, اتحاد نہیں ہوتا. یہ تنظیمیں اس وقت جو ہے وہ فائدے مند ہیں جب قوم دین سے وابستہ ہو, دین سے ہماری وابستگی ہو, دین ہماری زندگیوں میں ہو, دین کو ہم اہمیت دیں, واجبات ادا کریں, مستحبات ادا کریں, حرام سے محفوظ ہوں, خدا سے ڈر اور جو ہے خوف خدا خوفی انسان کے اندر ہو, انسان کے اندر میں شہادت کا شوق ہو, آخرت میں ایمان ہو, یہ چیزیں ہو تو پھر تو تنظیمیں کام دیتی ہیں کہ منظم کرو اور اس جو قوت ہے اس کو مضبوط کرو. لیکن اگر جو ہے ہم دین سے وابستہ ہی نہیں ہیں اور تنظیمیں بناتے رہیں گے, پارٹیاں بناتے رہیں گے, یہ کبھی ہم جو ہے متحد نہیں ہوں گے دین پہ. وقتی طور پہ ہو جائے گا, تھوڑا بہت جو ہے وہ اظہار ہو جائے گا, اس کے بعد حال پھر وہی ہو جائے گا. اس کا جو فارمولا ہے وہ فارمولا یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ اپنی قوم کو دین سے وابستہ کریں. دین سے وابستہ کرنے کے بعد جب ہم پلیٹ فارم بنائیں گے, تنظیمیں بنائیں گے, تو پھر جو ہے اتحاد ہوگا, ورنہ جو ہے وہ اتحاد نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے. کافی عرصے کے بعد جو ہے آپ سے گفتگو کرنے کا ملا ان شاء اللہ, مزید جو ہے اگلے کچھ دروس میں آپ کی خدمت درج کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.